रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अयोध्या में खूब बाजे बज रहे हैं, लोग आपस में बात करते हैं कि बाजे क्यों बज रहे हैं, कि शायद भरत जी गए में वो आ सकते हैं। अच्छा, तो चलो चलो रास्ते में खड़े हो जाए और भरत जी आवे उनके दर्शन करें। हाट बाट घर गली अथाई कहे परस्पर लोग लुगाई, चाहे दुकानों पर जाओ चाहे घर में बैठो चाहे अथाई जटे हाथा जहां खूब आराम से हथाई करते हैं हथाई वहां पर बैठ जाओ। एक ही एक बात है, कोई कहते हैं कि अरे पता है कि नहीं कल राम का अभिषेक होने वाला है। अरे हाँ, ये तो हमारी अभिलाषा थी, कल राम जी और सीता सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, वो भव्य स्वरूप हम हृदय में धारण करेंगे, हम कल का दिन बहुत आनंद में लेंगे। कल कब हो, कल कब हो। यहां तो अयोध्या में ये हो रहा है, इधर देवताओं की मीटिंग हो रही है, देवता लोग मीटिंग करके विघ्न में विघ्न करने की बात सोच रहे हैं। विघ्न मनावई देव कुचाली, विघ्न मनावई देव कुचाली, देवता लोग हैं वो कुचाल चल रहे हैं और विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाइन अवध बधावा, उनको ये अयोध्या का आनंद अच्छा नहीं लगता है, देखते हैं कि कल राम जी राजा हो जाएंगे तो ये वनवास वगैरह नहीं होगा, रावण सीता को नहीं चुरा पाएगा तो फिर ये रावण नहीं मरेगा, रावण का पाप का घड़ा नहीं भरेगा। तो तिनहि सोहाइन अवध बधावा, उनको अयोध्या का आनंद अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कि चोरई चंदिनी रातिन भावा, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, चांदनी रात में तो पकड़े जाएंगे भाई, कोई हमको देख लेगा, घर में घुसते देख लेगा अथवा घर से बाहर भागेंगे देख लेगा, तो चोर को जैसी चांदनी अच्छी नहीं लगती, ऐसे आज देवताओं को राम जी का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता, तो करें क्या हम। तो उन्होंने सरस्वती को बुलाया और उसके पैरों में पड़ गए, सरस्वती से विनती करी कि हे सरस्वती कोई ऐसा काम करो। अब देखो यहां सरस्वती को क्यों बुलाया, बृहस्पति को बुलाते जो गुरु हैं देवताओं के, इंद्र को बुलाते कि इंद्र तो खुद बुलाने में, बृहस्पति तो आते नहीं ऐसे मौके पर, गुरु है वो जानते हैं कि देवता लोग क्या कर रहे हैं अच्छा नहीं है, उन्होंने सरस्वती को बुलाया क्योंकि सरस्वती का काम है कि बोलने का, तो ये काम किसी और ताकत से होने वाला नहीं है कि राम जी का अभिषेक कोई रोक दे, ये काम केवल वाणी से ही, तो राम का राज्याभिषेक का काम चला ये वाणी से ही रुकेगा और कोई उपाय नहीं है। राजा ने जाकर गुरु जी को वाणी से ही कहा कि राम जी का अभिषेक करना चाहता हूं और प्रजा को भी वाणी से ही सुनाया। अब ये वाणी से ही सुनाया और वाणी से ही आनंद पैदा हुआ तो ये वाणी से ही समाप्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए सरस्वती जो है उसी को ही बुला करके पैरों में पड़ करके देवता लोग कहने लगे, हे माँ विपति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करी सोई आज कर वो काम करो, हमारी विपत्ति बड़ी है। इसका मतलब कि राम के राज्याभिषेक में बाधा पहुंचाओगे तो विपत्ति तो आएगी, किस पर आएगी, सब पर आएगी भाई, राम जी पर भी आएगी, अयोध्या पर आएगी, सुनेंगे उन लोगों पर आएगी, विपत्ति तो आएगी, तो सब पर विपत्ति आएगी। तो एक तो सबकी विपत्ति है, एक हमारी विपत्ति क्या है कि ये रावण नहीं मर रहा है ये, तो इन दोनों में देखा जाए तो विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, हमारी विपत्ति बड़ी है, अयोध्या की विपत्ति छोटी है। अरे छोटी बात करते हो दशरथ जी तो मर ही जाएंगे, कह नहीं वो विपत्ति नहीं है, क्यों, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजनन होई। दशरथ जी महाराज तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, इतनी बार तो राम लिए, वो राम राम करते हुए मर रहे हैं, उनके ऊपर काहे की विपत्ति। विपत्ति क्या है, राम जी से वियोग होगा, यही विपत्ति है। तो इस विपत्ति में इनके तो और ज्यादा लाभ होगा, और रावण जिंदा रह गया तो भाई हमारे तो विपत्ति में कोई लाभ की बात है ही नहीं। एक विपत्ति होती है जो दिखने में विपत्ति दिखती है, अंदर में बड़ा लाभ है। राम जी के लिए अयोध्या वाले रोएंगे तड़फेंगे, तो भगवान के लिए रोना तड़फना तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो विपत्ति दिखती है, ये रो रहे दिखता है। देखो एक आदमी घर में कोई मर गया वो आदमी रोता है, कोई माई बाई रोती है, अरे एक भक्त है वो भगवान के लिए रोता है, तो भगत जो रोता है उसका अपने हृदय पर आदर होता है, वो देखो कैसे भगत है ये, भगवान के लिए रोते हैं। और माई बाई भाई रोते हैं, एक सहानुभूति हो सकती है कि देखो भाई इनका पति मर गया, इनका जो है ये मर गया, भाई मर गया, रोते हैं, एक मामूली सी लौकिक सहानुभूति है, लेकिन इनमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा। इसलिए अयोध्यावासी रोएंगे भी तो उनके लिए तो भक्ति बढ़ेगी, लेकिन रावण यदि नहीं मरा तो ये तो रावण के न मरने से कोई भगवान की स्मृति हमारे अंदर जगती हो तो फिर तो भले रावण जीता रहे, पर ये बात तो है नहीं। इसलिए विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तो करिए सोई आज, राम जाए बन राजु तजी हो सकल सुर काज। राम जी वन में जाने चाहिए, राम जी वन में जाने चाहिए। देवताओं ने ये निर्णय नहीं कहा था कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, ये देवताओं ने निर्णय नहीं किया था, उन्होंने तो इतना ही निर्णय दिया कि भाई राम जी वन में जाए बस। देवताओं की बात सुनी तो सरस्वती कांपने लग गई। सरस्वती सोचने लगी कि ओहो मैं तो कैसी हो गई, जैसे कमल का बगीचा है और उस कमल के बगीचे में बर्फ गिर गई हो, रात को खूब बर्फ गिर जाए, पोह माघ में जो वर्षा होती है ओला पड़ते हैं बर्फ गिरती है, सब कमल की खेती नष्ट हो जाती है, ऐसे आज मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो वो बिचारी कांपने लगी, घबराने लगी, तो देवताओं ने कहा घबराओ मत माँ, आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई राम जी आप पर नाराज नहीं होंगे। क्यों, अरे राम जी क्यों नाराज होंगे, प्रसन्नताम यान गताभिषेकत है तथान ममले वनवास दुखत है। जो राम जी कभी सुख में सुखी नहीं होते, जो राम जी कभी दुख में दुखी नहीं होते, उन राम जी को चाहे आप अयोध्या के राजगद्दी पर बैठा दो चाहे उनको वन में भेज दो, एक ही बात है, कोई उनमें फर्क नहीं पड़ता। तुम जानो सब राम प्रभाव, सरस्वती जी आप राम जी का प्रभाव जानते हो कि वो कभी हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होते। हर्ष और शोक को कौन प्राप्त होता है सरस्वती जी, जो जीव प्राप्त, जीव। देखो भगवान में और जीव में अंतर क्या है, अंतर इतना ही है कि जो सुखी दुखी होता है वो जीव है और सुखी दुखी नहीं होता वो भगवान है, बस। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव तो अपने कर्मों से सुख दुख, अब राम जी कोई कर्मों के कारण से दशरथ जी के यहां थोड़ी अवतार लिए, निश्चिंत हो रहा हो तुम इन राम जी को कोई सुख दुख होने वाला नहीं है। एक बात और है, क्या राम जी भी यही चाहते हैं? राम जी चाहते हैं कि यहां रवाना हो गई। अब वहां से वो रवाना हुई, पर मन में एक विचार था कि देवताओं की बुद्धि बड़ी पोची है, ये अच्छी बुद्धि नहीं है। अपने आराम के लिए राम को बन की बात सोच कह रहे हैं, अच्छी नहीं है। ये देवता लोग हैं कैसे कि रहते तो ऊंची जगह, देव स्वर्ग में रहते हैं, ऊंच निवास, और करतूत उनकी बड़ी नीची सुगली करतूत है। या तो देवता घमंड करेंगे, या भोगों में पड़े रहेंगे, या किसी को पछाड़ेंगे, किसी से द्वेष करेंगे। ये देखो देवता लोग है ना, ये काम क्रोध लोभ देवताओं में खूब रहता है। अब देवता लोग सोचते हैं कि काम क्रोध लोभ आदि कैसे नष्ट होते हैं? भोगने से तो नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि देवताओं के पास बहुत भोगने की सामग्री। वो सोचते हैं काम क्रोध लोभ आदि अकल से दूर होते हैं। अकल कहां मिलेगी? अकल मनुष्य शरीर में मिलेगी। देवता लोग मनुष्य शरीर चाहते हैं। ये कैसे देवता है? सरस्वती सोचती कैसे देवता है? दूसरे की जरा सी भी उन्नति या उनका सुख इनको सुहाता ही नहीं है। परंतु सरस्वती भी क्या है, आगिल काज विचार बहोरी। अरे और तो कुछ नहीं है, रावण मरेगा, सारा विश्व सुखी हो जाएगा, बस ऐसा विचार करके वो वहां से रवाना हुई। और ये भी सोचने लगी कि करी है चाह कुशल कवि मोरी, आगे जाकर के अच्छे अच्छे कवि मेरी चाहना करेंगे। अरे सरस्वती मेरी वाणी में बैठो। क्यों भाई, अभी तक तो राम जी का केवल जन्म हुआ है, धनुष टूटा, विवाह हुआ है, अयोध्या का राज मिला, इतना ही चरित्र है ना। ये चरित्र तो सबके ही होते हैं, कोई खास नहीं है। सब जन्मते हैं राजा लोग, सबकी शादियां होती है, सब राजगद्दी पर बैठते हैं। पर राम जी जब राजा होंगे, उनका जो वनवास चरित्र है ना, यही सबसे बड़ा राम चरित्र है। तो उसको लिखने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी अच्छे अच्छे कवियों की। चलो चलो अब चलो, ऐसा विचार करके सरस्वती रवाना हुई। रवाना होकर के कहां आई? हर्षि हृदय दशरथपुर आई हो, रामपुर आई नहीं आया, दशरथ जी के यहां, दशरथ जी के नगर में आई। और आकर के कैसे आई? जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जैसे किसी आदमी की ग्रह दशा खराब होती है ना, ऐसे अयोध्या की खराब ग्रह दशा के रूप में सरस्वती वहां पर आई, और एक एक को देखने टटोलने लगी हूं। कोई तो राम जी में प्रेम करता है, कोई भरत में प्रेम करता है, कोई राम जी में, कोई भरत में, ऐसे सबको टटोला, सबको टटोल करके देख लिया कि भाई इस अयोध्या के अंदर तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है। सबको टटोला। एक थी बुढ़िया और मेले कुचेले कपड़े पहनने वाली, बड़ी कुरूप, नाम मंथरा मंदमती। न तो उसके मन में राम जी के प्रति प्रेम, न भरत के प्रति प्रेम। देखो या तो भगवान में प्रेम हो, या भगवान के भक्त में प्रेम हो, तो मंथरा के हृदय में दोनों के अंदर ही प्रेम नहीं था। उसका प्रेम तो केवल एक केकई में था। नाम मंथरा मंदमती हो, महान खोटी बुद्धि वाली। क्यों? कि जिसके अंदर राम जी का प्रेम नहीं और भरत का प्रेम नहीं, माने भगत का प्रेम नहीं, उसकी बुद्धि तो मंदी होगी। चेरी के कई केरी, केवल केके की दासी, केके की भगत। तो कहा कि सारे अपयश की पिटारी इसी पर डाल दो, मैं क्यों आगे आऊं? तो उसके ऊपर अपयश की पिटारी डाली कि संसार में जो भगवान का भक्त नहीं होता और भगवान के भक्त का भक्त नहीं होता, उसकी क्या दशा होती है? मंथरा जैसी होती है। उसकी बुद्धि को घुमा दिया सरस्वती ने, और सरस्वती जल्दी से जल्दी भग गई वहां से। क्यों भग गई? कहीं और कुछ अनिष्ट न हो जाए, भगी सरस्वती वहां से। गई गिरा मति फेरी, वो तो चली गई वहां। अब ये सरस्वती का प्रकरण पूरा हो गया, अब मंथरा का प्रसंग चला है। दीख मंथरा नगर बनावा, बहुत सुंदर नगर बनावा। और आज ऊपर चढ़ करके देखी, महल के ऊपर देखी कि लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। मंजुल मंगल बाज बधावा, बहुत सुंदर सुंदर बाजे गाजे सारे अयोध्या में बाजे गाजे बज रहे हैं। वो उतरी और गली गई, उधर गई, क्या हो रहा है? अरे तुझे पता नहीं है मंथरे? तो मुझे क्या पता, राम जी का अभिषेक होने वाला है कल। उस गली में गई, वहां गई, वहां गई, पूछे सुलोगन का उछाऊ। राम तिलक सुनी भाव उदाऊ, राम जी के तिलक की बात सुनी तो उसका हृदय जलने लग गया। हृदय क्यों जला भाई? कि राम जी का प्रेम तो था नहीं। प्रेम होता है जड़ के समान, जहां जड़ होता है वहां आग नहीं होती। अब भगवान के या भक्त के प्रति प्रेम होता तो मंत्र का हृदय जलता नहीं, आग पैदा नहीं होती, वहां तो पानी रहता है। प्रेम का पानी वहां है नहीं। अब वो नीच जाति में पैदा हुई थी, वो कुजाति और कुबुद्धि, वो विचार करने लगी कि क्या करें क्या करें, हे भगवान क्या करें, आज किसी न किसी प्रकार से कोई अनर्थ हो जाए आज रात में तो सब सब काम ठीक हो सकता है। कैसे लगे यूं खोटे खोटे विचार सोचने लगी। कैसे सोचने लगी? जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो और एक किरातनी भीलनी है, वो देखती है कि मधुमक्खी का कैसे मिले, से यूं चढ़ू यूं चढ़ करके यूं चढ़ू और मधुमक्खी भी मुझे खावे नहीं, किस उपाय से ले कोई मुझे वो मिल जाए, दूसरा कोई साधन मिल जाए जिसे तोड़ू, क्या करूं, किमी गवत तक ले ही कई भांति। वो ये ताक लगाई रहती है कि किस प्रकार से मुझे ये मिले, कैसे मुझे मिले। कुछ उपाय तो सोचा उसने और सीधी केके के पास आई और वहां लंबी सांस लेकर के और अनमनी सी होकर के सांस लेकर के आंसू बहाने लगी, त्रियाचरित करने लगी। देखो त्रियाचरित शब्द पहली बार आया है। ये त्रियाचरित ना, एक तो ये मंत्रा करेगी और एक आगे केके ही करेगी। उतरु दे न ले उस आंसू, केकी जी ने पूछा, अरे 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 क्या बात है क्या बात है, आज अनमनी सी कैसे है, मुंह उतरा हुआ कैसे है भाई, मंत्रे तू इतनी उदास क्यों हुई है? तो वो त्रियाचरित करती हुई आंसू डालने लगी। माने जितना स्त्री के दुख होता नहीं है ना, देखो भाई माताओं बहनों आप माफ करना, ये इस बात बोलते हैं आपकी गोद में तो मैं पला हूं भाई, माताओं की गोद में इस गांव में तो पला हूं, कैसे बोलूं, मेरी बोलने की ताकत नहीं है, लिखी हुई बात बोलता हूं, माफ करना आप। नारी चरित्र करी ढारे आंसू, जितना दुख होता नहीं है ना उतनी ज्यादा दुगुना तिगुना दुख रो करके बताती है, तो ये नारी चरित है। तो नारी चरित्र करी ढारे आंसू, वो बहुत ज्यादा यूं बता के और शिष्य मार मार के रोने लगे। रानी के अच्छा तो बहुत जो है बात बनाना जानती है, क्या बात हुई, क्या कोई आज तुझे लक्ष्मण जी ने फटकार दिया क्या, कोई सीख दी है क्या, क्योंकि तेरा स्वभाव है खूब जो है बड़ी बड़ी बातें बनाने का। उससे खिन्न होकर के लक्ष्मण जी ने आज आपको ऐसा कुछ दीन लखन सिख असमन मोरे, लक्ष्मण जी ने आपको ऐसी शिक्षा दे दी क्या ये? तब हु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कार्य जनु सांपिनी। तो भी वो कुछ बोली नहीं, बहुत बड़ी पापिनी, कुछ नहीं बोली और लंबी लंबी सांस कैसे छोड़ने लगी, जैसे कोई छिड़ी हुई सर्पणी होती हो, ऐसे ऐसे करने लगी वो। तो सभय रानी कह कैसी किन, तो रानी को लगा कि अरे कोई बड़ी बात है, नहीं तो मैं तो हंसी मजाक कर रही हूं, मैं रानी होकर के एक दासी से हंसी विनोद करूं मजाक करूं तो रानी को तो नहीं, ये दासी को तो खुशी होनी चाहिए कि देखो ये रानी मुझे कितना चाहती है, लेकिन फिर भी ये फू फू कर रही है कोई ना कोई बात है। क्या बात है, क्या बात है कि मंत्र है, क्या बात है? राम का सब कुशल है ना, पहले ही पहला राम का नाम लिया केकई ने। केकई के मन में राम के प्रति बड़ी भक्ति थी। लोग कहेंगे सब बनावटी बातें, बनावटी बातें नहीं, आपको चौपाइयों से बता देंगे कितनी भक्ति थी हो। तो सब है रानी कह कैसी किन कुशल राम, राम के कुशल है ना, तो इतना रो रही क्या बात है। अच्छा महाराज दशरथ जी ठीक है ना, लक्ष्मण जी के ठीक समाचार है, भरत के ठीक है, शत्रुघ्न के ठीक है ना, सबका कुशल क्षेम पूछी तो मंथरा के मन में सूल चलने लगी हुई और ज्यादा दुख हो गया और वो कहने लगी, ओ के जी महारानी जी, हे माता जी, हमको कौन सीख देगा, हमको कौन शिक्षा देगा, हम किस लिए गाल बातें बनाएंगे, क्यों गाल बजाएंगे? गाल बजाने माने बड़ी बड़ी बातें करना। गालु करब के करबल उपाय, हमारे पास ताकत भी क्या है, हम क्यों बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे जी? हमें तो आज यही बात का दुख है कि कल राम जी युवराज होंगे, राम को छोड़ करके और किसका कुशल क्षेम बताएं, महाराज ने तो उनको युवराज पद दे दिया है। और क्या बताएं, कौशल्या जी के लिए तो सब प्रकार से अनुकूलता हो गई, उनके तो विधाता दाएं हो गए, माने विधाता अनुकूल हो गए, उनके तो क्या बताएं, घमंड में कोई कमी नहीं, खूब घमंडी होगी आज कौशल्या, ऐसे जलती है, ऐसे करती है, देखत गर्भ रहत उर नाइन, उनका घमंड उनमें समाता ही नहीं है। देखो तो सही, केवल महल में बैठी हो, कैसा नगर बनाया हुआ है, सुंदर नगर, जहां जाओ वहां पर झंडियां लगी हुई है, ओहो ये इतना नगर का सौंदर्य सजावट देखा, मेरे मन में तो बहुत क्षोभ पैदा हो गया, मेरे मन में इसलिए दुख हो गया कि तुम्हारा बेटा तो विदेश में बैठा है, तुम्हें कोई सोच है नहीं, तुम तो ये जानती हो कि राजा मेरे बस में है, इसलिए खूब आराम से पलंगों के ऊपर पड़ी रहती हो, नींद लेती रहती हो, और राजा तुम्हारे साथ कितना कितना कपट करता है इस बात को तुम पहचानती नहीं हो। क्या करूंगा मैं, एक दुख थोड़ा ही है, हमारे कई दुख लगा हुआ है, इधर भी दुख है उधर भी दुख है, क्या करें हम। ऐसे वो प्रिय वचन बोलने लगी तो केके ने क्या झुकी, रानी थोड़ी सी जो है यू झुक करके, रानी नहीं झुक करके झुकी रानी, अब रहू अरगानी, अब चुप रहना, ज्यादा मत बोलना, पुनिय से कबहू कैसी घर फोरी, हमारे घर को फोड़ने वाली ऐसी बात यदि आईने तेरे मुंह से निकल गई तो तेरी जीभ निकला लूंगी, मालूम है? तुम काने घोड़े कुबरे ऐसे लोग होते हैं ना, ये बहुत कुटिल होते हैं, तुम्हारे षड्यंत्र बड़े खराब होते हैं, और फिर तुम स्त्री हो, स्त्री तो और ज्यादा कुटिल होती है, खुद के ही बोल रही है, और फिर तू दासी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना फटकारा, फटकारने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या हुई, भरत मात मुस्कुराने लग गई, ये सबसे बड़ी केके की कमी रही, फटकारते हो तो मुस्कुराओ मत, और मुस्कुराते हो तो फिर फटकारो मत, प्रसन्न अवस्था में हो तब डांटो मत, डांटना और मुस्कुराना, डांटते आप मुस्कुरा दोगे तो वो डांट बेकार हो गई, हंसी आवे तो भी रोकना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको डांटते और वो बहाना बनाता है कई तरह का, उस समय हंसी आ जाती है, हंसी आवे तो भी थोड़ा बहुत उसको डांट डपट करके अलग से हंस लो, बोले कि उसके सामने नहीं हंसना चाहिए, सामने हंसने से भी बच्चा वो ढीठ हो जाता है, मार खाने में भी ढीठ हो जाता है और वो बात का आदर नहीं करता, ये केके की सबसे बड़ी कमी रही है। पहले केके ने जो ये कहा ना कि हमारे घर फोड़ने वाली बात मत करना, ये बहुत अच्छी बात कही, तुम तो दासी हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों हमारे घर की बात पंचायती करती हो, ऐसा करके वो मुस्कुराने लगी। मुस्कुरा करके और फिर क्या कहती है, ए ओ देखो मंथरे, तुम बहुत ठीक बोलती हो, सदा मेरे से प्रिय बोलती हो, प्रिय वादिनी सिख दीनो, तुम्हें देख मैं सीख देती हूँ, शिक्षा देती हूँ, मेरा तेरे पर कोई स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, मैं तो केवल तुमको शिक्षा देने के लिए बोलती हूँ। तुमने जो कहा ना कि राम का अभिषेक होने वाला है, अरे ये तो दिन हम रात दिन प्रतीक्षा करते रहते, कब राम का अभिषेक हो, कब राम का अभिषेक हो। तुमने जो कहा वो दिन आवे तो सही कम से कम। अरे मंथरे तुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ कुल में जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना वो होता है मालिक, और छोटा भाई होता है वो होता है सेवक। ये है तमाशा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई तो स्वामी और छोटा भाई होता है वो सेवक। ये सच बता, तू मुझे सच्ची सच्ची बता कि कल राम का तिलक होने वाला है क्या? यदि ये बात सच्ची है तो ले मेरे से आभूषण, दे जो सब ले ले। देव मांग मन भावत आली, क्या बताए, मेरे मन में आज बहुत खुशी है। तू कह रही है कौशल्या बड़ी गर्वित हो रही है, अरे कौशल्या का गर्व कौशल्या की खुशी से ज्यादा खुशी मेरे में है। क्यों? क्योंकि राम सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। यद्यपि वो सब माताओं का आदर करते हैं, परंतु मो पर कर ही स्नेह विशेष ही, मेरे से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। क्यों, तुमको पता है क्या? नहीं, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने तो परीक्षा करके देखा है भाई, इसलिए मैं परीक्षा करके बात बोलती हूँ। देख मैं तो ये भी कहती हूँ कि भगवान मेरे पर खूब कृपा करें, खूब कृपा करें, तो अगला जन्म भी हमारा हो तो मेरे राम जी जैसा तो बेटा हो और सीता जी जैसी मेरे पुत्र वधू हो। मुझे राम और सीता चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म तक यही चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान आन, उस माँ का बेटा है भरत। जो विधि जन्म दे करि छोहु हो सी हो राम सिय पुत पुतोहु, ऐसे मेरे राम और सीता जैसे पुत्र और पुत्र वधु होने चाहिए। मुझे राम अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। तुमको राम के राज तिलक की बात सुनकर के इतना दुख क्यों हुआ रे? सच्ची सच्ची बता, भरत शपथ तो ही सत्य कहो, तुझे भरत जी की सौगंध है। अब यहां भरत जी की सौगंध दिलाई क्यों? क्योंकि कौशल्या को भरत इतना पसंद नहीं था, नहीं केकई को जितना राम पसंद थे, तो कहा तू भरत की सौगंध खा, तुझे भरत की सौगंध है। भरत की सौगंध इसलिए दिलाई कि केकई ये मंथरा के मन में भी भरत के प्रति प्रेम नहीं, राम के प्रति प्रेम नहीं, केकई के हृदय में राम के प्रति प्रेम है। तो राम के प्रति प्रेम होने से भरत में अपना आप ही प्रेम, भगवान में प्रेम होने से भक्त में हो ही जाता है। भरत की सौगंध इसलिए खिलाई कि तू मेरे से प्रेम करती है, मेरे से प्रेम करती है तो तेरा भरत की तरफ विचार हो सकता है, प्रेम तो नहीं है, मेरा बेटा इतना ही समझेगा तू, इतना ही समझेगी तू। तो भाई तू सत्य सत्य बात बता, तेरे मन में कोई कपट दुराव नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा हर्ष का समय है, राम को राजगद्दी मिलने वाली है, तू इतनी लंबी लंबी सांस दे करके चिंता क्यों कर रही है? तो केके बोलती है, साहब हमने जो कहना था वो कह दिया, एक बार में हमने जो कहना था वो कह दिया और उसका फल भी हमको मिल गया, क्या क्या हमको सुनने को मिला। अब आप हमको हमारी जीभ को खींच लोगी तो मैं दूसरी जीभ कहां से लाऊंगी? क्यों मैं आपको ऐसी बात कहूं कि जिससे आप मेरी जीभ खींचो, और मैं कुछ कह दूंगे तो आप मेरे माथे को फोड़ोगी? तो भाई मुझे तो और कोई चिंता नहीं, मुझे क्या होने वाला है, भले ऊ कहत दुख रऊ रे लागा, मैं तो भले के लिए बोलती हूँ और वो देख रहा हूँ कि आपके दुख हो जाएगा, मैं तो कहती हूँ आपके भले के लिए और वो आपको मेरा कहा हुआ आपके दुख हो जाता है। मैं क्या कहूँ, झूठा हमसे कुछ कहा नहीं जाता है। मैं झूठा क्यों कहूँ, मैं ते प्रिय तुम्हें करूँ मैं माई, तो कहो झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करूँ मैं भाई माई। तो मुझे ऐसा है कि झूठ बात यदि मैं कुछ आपसे कहूँ तो बात कुछ झूठी बना बना करके और तुमको प्रिय करूँ तो उसका परिणाम कड़वा होगा। क्यों हम ऐसी बात करें, और ठाकुर स्वाति बात, मुंह दिखाई बात, ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बात हमसे कही नहीं जाती। इससे तो अच्छा है बाबा मौन रहो, और मौन हमसे रहा नहीं जाता, क्या करें। तुम कहते हो कि तू ऐसी है, तू शरीर से कुबड़ी है, तो ये तो विधाता ने हमको ऐसा रूप दे दिया, मैं क्या करूं। करी कुरूप विधि परबस की ना, और विधाता ने हमको कुरूप क्यों दिया, बाबा सो लुनिए लही जो दीना, जो बोया सा वो आदमी, जो आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और जैसा वो देता है वैसा ही वो लेता है, जैसा देता है वैसा ही लेता है, जो बोता है वही काटता है। इसलिए कौन रिप हो हम ही कहानी, बाबा कोई राजा हो और कोई कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं है। चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी, अब मैं कोई दासी होकर के रानी तो होने से रही, कोई कुछ ही हो कोई नहीं। एक आपका अनभल हमसे देखा नहीं जाता है, उम्र भर आपके यहाँ रही हूँ, आपके टुकड़े खाई हूँ, इसलिए आपके देख करके और आपकी दशा क्या होगी ये सब देख करके हमसे चुप रहा नहीं जाता है। तो ठीक है, हमने थोड़ी बहुत बात आपको सुना दी, आप हमको माफ करो, माफ करो, क्षमा करो। केकी उसकी तरफ देखने, अब देखो केकी क्या है, जिसके हृदय में राम रस भरा पड़ा है, राम रस माने राम का प्रेम, वो केकई अब धीरे धीरे कुसंग में लगी तो ये राम का प्रेम सरोवर सूखने लग गया। तो जब भगवान का प्रेम सूखता है तो वो सूखता क्यों है, केवल कुसंग के कारण से। शेर जी ने सुनाया था ना कल कि सत्संग से जितना लाभ होता है कुसंग से उसे चौगुना नुकसान होता है। सत्संग से लाभ बहुत होता है पर कुसंग से चौगुना नुकसान होता है। हम लोग सत्संग भी करते हैं और कुसंग भी करते हैं, सत्संग का लाभ थोड़ा होता है, कुसंग ज्यादा होता है। कुसंग सत्संग करते हुए हम ये नहीं सोचते कि हमारे कुसंग तो नहीं है, यदि कुसंग है तो वो सत्संग को खा जाएगा। कितना केकी के मन में राम के प्रति प्रेम है, जो ये कहती है कि कौशल्या से ज्यादा मुझे चाहते हैं राम, और लो आज मेरे तो कौशल्या तो क्या घमंड करेगी, मैं ज्यादा घमंड करूंगी यदि राम को कल राज्याभिषेक मिलता है तो। वो केकई इस मंथरा की बातों में उलझती गई। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिया धर बुद्धि रानी। अब रानी अस्थिर बुद्धि वाली होगी, इतनी देर तो राम जी की भक्ति थी, अब राम जी की भक्ति भी आ रही है, थोड़े थोड़े केकी की बात ये मंथरा की बात भी जच रही है, अब ये बुद्धि थोड़ी थोड़ी डामाडोल होने लग गई। सुर माया बस बैरिनी सुरिद जानी पतियानी, देवताओं की माया में वशीभूत हुई मंथरा की बात अब केके को बहुत अच्छी लगने लग गई। सुरिद जानी पतियानी, पतियान माने विश्वास करना। अब वो उसको बारे में सुन सुन सुन, तू क्यों इतनी बात बनाती है रे मंथरे, मैं तुझसे बहुत ठीक ढंग से बात पूछना चाहती हूँ, बैठ। अब वो ऐसी हो गई जैसे सबरी गान मृगी जनु मोही, जैसे कोई सबरी है वो गान गाए और मृगी लुप्त हो जाए, जो मृग का शिकार करने वाली है वो गाना गाती है, अरे तेरे बाण लगेगा तेरे पेट में, अभी ये भीलनी है ये तेरे को बाण से मारेगी, पर वो बिचारी हिरणी उसमें मोहित हो जाती है। ऐसे यहाँ पर हिरणी तो है केकई और भीलनी है ये मंथरा, तसीमती फिरी आई जैसी भाभी, अब जैसी भाभी होने वाली है वैसे ही वह केके की बुद्धि फिरने लग गई। रहसी चेरी घात जनु फाबी, अब वो दासी है वो भी उसको अच्छी लगने लग गई, फबने लग गई कि वाह वाह ये तो बहुत अच्छी बात बोलती है, इसलिए उससे और पूछती है बात और पुनि पुनि पूछ अरे तो और बता तू क्या, तेरे पेट की बात तो बता, तू यू गुनगुना रही पेट में तेरे असल बात क्या है। आप तो मुझसे पूछते हो लेकिन मुझे कहने में डर लगता है क्योंकि आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि तू घर फोड़ने वाली है, तो मैं अब ये नाम क्यों रखूं, इसलिए मैं घर फोड़ने वाला नाम रखना नहीं चाहती हूं। ऐसे उसके मन में विश्वास जगाया। गड़ी छोली, गढ़ छोली माने गढ़ छोड़ छोड़ के माने बार बार खूब अच्छे ढंग से वो बात बना बना करके कहने लगी। असल में ये मंत्रा क्या थी कि अवध साढ़ साती तब बोली, ये अयोध्या की साढ़े सती थी माने साढ़े सात वर्ष तक ग्रह का प्रभाव रहता है, शनि आदि जो ग्रह है, दो ग्रह सबसे खराब होते हैं, एक तो शनि और एक मंगल। कहते हैं मंगल का नाम तो मंगल है ये खराब कैसे हुआ, भागवत में लिखा है तो ये अमंगलकारी, पर जैसे कोई आदमी डाकू हो बदमाश हो तो बेचारे घबराए हुए लोग क्या करते हैं, हाथ रहे सारे आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, उससे डरते हुए उसको अच्छा बोलते हैं। ऐसे मंगल है ना, ये होता तो अमंगलकारी है पर उसको मंगल बोलते हैं डरते हुए कहीं हमारा अमंगल न कर दे, इसलिए देखो शनिवार को मंगलवार को हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं दोनों, विशेष सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को, क्यों कि वो अमंगलवार है, अमंगलवार है तो हनुमान जी हमको बचाए भाई अमंगलवार से। शनिवार को क्यों कि शनि से बचाए। तो अवध साढ़ साती तब बोली, ये ग्रह दशा में ये साढ़े सात सबसे साढ़े सात वर्ष की दशा सबसे बड़ी होती है, तो अयोध्या के लिए तो ये मंत्रा साढ़ सती थी, साढ़े सती थी। वो कहने लगी कि देखो महारानी जी, आपने कहा कि मुझे जन्म जन्मांतर में राम जैसा तो पुत्र मिले, सीता जैसी पुत्र वधु मिले, जो तुमने कहा है वो उस बात ठीक है, लेकिन वो बीते दिनों की बात है, ये दिन तो आपके बीत गए, तुमको राम प्रिय लगते थे, राम को तुम प्रिय लगते थे, लगते थे ना, भी भूतकाल बीत गया, क्योंकि समय आने पर कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं कि शत्रु होता है वो मित्र हो जाता है और मित्र होता है वो शत्रु हो जाता है। समौ फिरे रिपु होई पीरीते, समौ फिरे रिपु होई पीरीते। देखो आप कमल की खेती होती है महारानी जी, उसमें सूर्य का प्रकाश कमल को खूब पोषित करता है, लेकिन कमल में से जब पानी निकल जाता है तो वही सूर्य उसको जलाने वाला हो जाता है, ऐसा ऐसी गर्मी लगती है कमल मुरझा जाता है, क्यों उसमें पानी नहीं है। ऐसे ही जब अंदर में प्रेम नहीं रहता ना, तब वो अपना मित्र भी शत्रु हो जाता है। और तुम्हारा देखो, तुम्हारा शत्रु राम नहीं है, मेरा लक्ष्य राम की तरफ नहीं है, तो ये जो तुम आपस में सौत के रूप में है ना, इन सौत सौत में कभी नहीं बनती है, तो ये जो कौशल्या है ये तुम्हारी सौत है, ये तुमको जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहती है, क्योंकि कौशल्या को पता है कि राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इस केकी को कैसे यहां से निकाले, तुमको काटा समझती है, इसलिए जो पौधा उखड़े नहीं और उसको बराबर पानी देते मिलते रहे, चारों तरफ थावला वगैरह बना करके पानी को रोका जाए, वो पौधा अच्छा ऊंचा बढ़ता है। ऐसे तुम अपने आप की रक्षा करो केकई, क्या बताएं महारानी जी, तुम ही न सोच सुहाग बल, तुमको तो अपने पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना उसके ऊपर विश्वास है कि उसके लिए आप सोचते हो कि ये तो मेरे बस में है, मैं कहूंगी वैसा दशरथ जी को करना पड़ेगा। अरे दशरथ जी भी देखिए अंदर से बड़े मलिन है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ऊपर ऊपर से बोलते हैं, और तुम्हारा बड़ा सरल स्वभाव है, तुम बातों पर विश्वास करती हो, बात को देखती हो, मन को नहीं देखती। ये जो बात कहां से उठती है, मन से उठती है ना, तो मन अच्छा नहीं है तुम्हारे पति का। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सोचो, देखो कौशल्या कितनी राजनीतिज्ञ है, उसने कैसी बात बनाई है, राजगद्दी की बात ऐसे समय पर छेड़ी है जब तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है, भरत यहाँ नहीं है, वो ननिहाल गया हुआ है। ऐसे समय में पीछे से कौशल्या ने उनको बैका करके राम के राजगद्दी की बात छेड़ दी। राम में हम मानते हैं, राम में दोष नहीं है, पर कौशल्या का उद्देश्य क्या है? वो ये है सब सौते मेरी सेवा करें, और एक केकई ऐसी है कि जो अपने जो हमारे पति के बल पर गर्व करती है, इसलिए इसको यहां से साल तुम्हार कौशली माई, कौशल्या के हृदय में तुम खटकती रहती हो, तुम्हारा ही दर्द है, तुम्हारा ही साल है उनके मन में, उनके मन में बड़ी कपटता है। बहुत होशियार है ये कौशल्या, ये प्रकट नहीं होने देती, ऊपर से बहुत मीठी बोलती है, कैसी सुंदर चाल चली है, राजा का तुम पर बहुत प्यार है, कौशल्या उसको सह नहीं सकती है। तो पहले उसने राजा से संबंध बनाए और अपनापन ज्यादा बढ़ा करके ये सारा प्रपंच रचा, पर कितना जल्दी राम का राज लगन, ये लगन का दिन निकलवा लिया। अरे राम का लगन तो कल का ही दिन रख लिया, अरे इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, आप ही सोचो भरत के आने में क्या दिक्कत थी बताइए। हम जानते हैं भरत आता तो क्या होता, राम को ये टीका मिलता, और राम को टीका देने में किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। आपत्ति देखो आगे की आपत्ति, आगे की आपत्ति, राम के राजतिलक तक कोई आपत्ति नहीं। अरे भगवान, आगे का इतना दिन खोटा है के महारानी जी, जो तुमको वो खोटा दिन देने वाली सोचती है ना कौशल्या, उन्हीं को ही खोटा दिन मिले, आपको न मिले है। हाँ देव देव फिर सो फली ओ ही, उसी को ही वो फल मिले, ऐसा क्या खोटा है भाई। वो ऐसे कहने लगी, रची पची कोटि के कुटिल अपन कीने सी कपट प्रबोध। उसने ऐसे कैसे ऐसे कथा प्रसंगों को बड़े कुटिलता से और बड़े चतुराई से और कपटता से कहने लगी वो, कि उस सोत ने ऐसा किया और उस सोत ने ऐसा किया और उस सोत ने ऐसा किया, ऐसी ऐसी बातें कह करके उनके अंदर बैर विरोध बढ़े, ऐसी बातें कही। तो कहा कि सो अरे तुम और की बात मत, यदि राम अभिषेक राम का राज्याभिषेक होता है तो मेरे लिए क्या खराबी आती है। अब देखो केके का राम से प्रेम हटा और अपने में प्रेम है, अपने में। तो तुम मेरे लिए बात बताओगे? नहीं बताती भाई, कि नहीं नहीं जल्दी तुम्हें मेरी सौगंध है, पुनी पुनी रानी शपथ पुनी देवाई, बार बार वो कहने लगी। तब वो कहने लगी मंथरा कहने लगी, क्या अभी भी तुम नहीं जानती हो अपना हित अहित? तो देखो के महारानी जी, पशु पक्षी भी जानते हैं, 15 दिन हो गए आज अयोध्या को सजाते हुए, 15 दिन हुए नहीं, झूठ बोलती है ये, झूठ बोलती है, पर बहकाना है उसको, बहकाने के लिए तो भाई झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको। 15 दिन हो गए, सारी अयोध्या सज रही है, तुमसे कितनी बार राजा मिले है, आज तक तुमको ये नहीं कहा ना कि राम को राजगद्दी होने जा रही है? तो नहीं कहा, तो तुमको तो आज पता चला है, राजा तुमसे रोज मिलते हैं, कभी खबर ही नहीं करते, खाइए पहरिए राज तुम्हारे, और सत्य कहे नहीं दोष हमारे, क्या बताएं खाने पीने तो हम तुम्हारे राज में पड़े, अब क्या बताएं, सत्य तो कहना ही पड़ेगा, हमारा इसमें क्या दोष है, थोड़ा सा भी यदि हम झूठी बात बना के कहे तो हे विधाता, तो देखो हम जो है पट्टी के नीचे बैठे, झूठ बोले तो पट्टी आके पड़े, कभी पड़ती तो है नहीं, ऐसे झूठ आदमी बोले यार पट्टी पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है साहब? इसलिए नहीं पड़ती कि चढ़ाने वाले भी झूठ बोले हैं, जहां से पट्टी खरीद के लाए वो भी सब झूठ के ऊपर ही टिका हुआ है, कोई पड़े न कोई पड़ावे, कोई माता बढ़ावे, सब कहने भी बता है। तो जो भी दे हमें ही सजा, हमको भगवान सजा देवे। देखो राम जी का कल यदि तिलक हो जाएगा तो आपके लिए तो बड़ी भयंकर विपत्ति की बात हो जाएगी। मैं आपको जो है लो की लकीर खींच के कह देती हूँ, बोलो निश्चित आपके ऊपर खतरा आएगा। नहीं हुआ तो आप मेरे ये करके देख लेना, ये करे ऐसे आव ताव में बोलने लगी, आप क्या होगी, राम जी का जो राज्याभिषेक होगा उसी समय में कौशल्या आपको दूध में से माखी की तरह यहां से उठा के फेंक देगी और आपके भरत को भी फेंक देगी और हमें तो लगता है भरत को जेल खाने में डाल देगी। लक्ष्मण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण तो सदैव राम जी के चिपे रहते हैं, उनकी पगचंपी करते रहते हैं, ये लक्ष्मण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लक्ष्मण का नहीं बना सुमित्रा, सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही। ये बात सुनी तब जो है तन पसे उतन पसीना पसीना आ गया, कदली जी में कांपी, जैसे केले का वृक्ष यूं कांपता ही कांपने लग गई, वो ऐसे कांपने लगे रही हो, चक्कर आने लगा। तो मंथरा ने सोचा कि कहीं मर जाएगी, तो कुबरी दसन जीव तब चापी, तो कुबरिया दांतों के बीच में जीव ऐसे देखने लगा, अरे कहीं मर जाएगी तो मुश्किल है। फिर जो उनको पकड़ करके बैठो बैठो महारानी, देखो सुनो सुनो, देखो महारानी जी ऐसा कभी होता थोड़ा ही है, मैंने तो बताई है, और थोड़ा धीरज रखो, अपने ज्ञान से विवेक से काम ले। मैंने बताया इतने इतने लोग दुख पाए, अपने पर भी आ सकती है ये बात। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराय मानी मराली। अब वो क्या हुआ कि फिर प्रिय मीठी मीठी बाणी बोलने लगी ना, तो वो बड़े षड्यंत्र पूर्वक बोलने लगी। आप तो के जी आप भी तो बड़ी समझदार हो, आप ऐसे हो, आपके ऊपर आफत थोड़ी आएगी, आफत तो ऐसे करके वापिस उसको ठंडा मीठा किया ताकि मरने जाए तो मेरे पर आफत आ जाएगी। इधर केके ने क्या किया, बकई सराय मानी मराली, है तो वो बगुली, हाँ तू तो तू ही है, तू तो तू ही है, क्या बताए मंथरा, तेरी बात सुनती हूँ तो मुझे तुम्हारी बात सच्ची सच्ची मालूम लगती है। एक कहावत है संस्कृत में कि उष्ट्राराणाम विवाहेशु गर्दबा गीत गायका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम के अहो ध्वनि। ऊंटों का विवाह था, ऊंटों का विवाह था तो गधे वहां पर गीत गा रहे थे। गधे गीत गा रहे थे तो आपस में बड़ाई करे, अरे कितना सुंदर गा रहे हो, अरे रे रे आपका कितना अच्छा रूप है, इतनी लंबी गर्दन आपकी ही, कितनी ऊंची चीज रखी हो आप आराम से ले। वो कहते वाह कितनी सुंदर आपकी आवाज है, कितना अच्छा रूप है। अब गधा रमाज ना रो, ऊंट ऊंट रमाज ना रो, गधो आपस में प्रशंसा कर कहीं बड़ी बात होगी। पर कह नहीं परस्परम प्रशंसंती अहो रूपम अहो ध्वनि, केके तो बड़ाई करे मंथरा रही, मंथरा बड़ाई करे केके रही। कहा मंथरा तू तो बहुत सच्ची बात कहे, मारी रोज आंखिया दाहिनी आंख रोज फड़के जना मालूम देवे, तू बहुत सच बोलने वाली है। देख मैं रात में खराब खराब सपना भी देखूं तो मन लागे कि आगे कोई बड़ी भारी आफत आने वाली है, पर काई करूं भाई मंथरा, तू ही बता, मारा तो बड़ो शुद्ध स्वभाव है, कठी कोई दुख दियो नहीं, मारा तो इतो कि मन तो दाया बायरो ही ठा नहीं है, मैं तुम्हारा आराम सु रहूं, मैं कभी राजनीति करी नहीं है, आज तक कोई ने दुख ही नहीं है, लेकिन एक साथ मारे पर आज कौन से पाप रो फल है कि इतनी सारी विपत्ति आई है। देख तू सही बात कहवे, थारी बात बिल्कुल मारे पगा आएगी एकदम, मैं हटाऊ चाहे मारे ननियाल चली जाऊं, चाहे मारे पीर चली जाऊं, चाहे कठी चली जाऊं, पर ये कौशल्या रे ठोला रे नीचे तो मारे से कोन रही जाए, आ मारे टांट में ठोला मारे, अरे मैं सुनती रहू, नहीं भाई आ तो काम को नहीं है, जिये तन करब सवती सेवकाई, यहाँ रजार में पग दबाऊ, आ मारे सो आज वैन कोई काल में, चाहे माने तो शत्रुओं के बीच में राग दो बल, चाहे मन मार दो बल, मरनो चौख है पर सोतारी सेवा कर जीणो मना अच्छो नहीं लगे। मंत्रा देखी अब ठीक बात बैठी, मंत्रा ने देखा आगे अब बात ठीक झुकी, सुनी कुबरी ती माया ठानी, अब अपनी स्त्री माया उसके ऊपर चलने लगी लगी। हाँ असकस कहो मानी मनु ना, केकई जी आप इतनी नीची बात नहीं, हाँ केकई जी आप इतनी नीची बात कह करके अपने मन को क्यों दुखी करते हो, आपका तो सुहाग दिन दूना रात चौगना बढ़ने वाला है, बस आप तो मैं कहूं वैसा आप करते रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। जही राहुल अति अनबल ताका, जिन्होंने राजा को अपनी तरफ करके और आपका अनबल किया है ना, ये देख लेना ये मंथरा ऐसी काम करेगी ऐसी करेगी, ये सारा का सारा अनबल माने ये दुष्टता सब के कौशल्या पर आकर के पड़ेगी, जिन्होंने भी किया उन पर आकर के पड़ेगी। क्या बताएं महारानी जी, जब से मैंने ये सुना है कि आप पर आफत आने वाली, ये सुना मैंने, मुझे तो नींद आती है और न मुझे भूख लगती है, क्या करूं, भूख न बासर नींद न जामिनी, दिन में तो भूख नहीं लगती रात में नींद नहीं आती। फिर मैं एक ज्योतिषी के पास गई, एक ज्योतिषी नहीं कई ज्योतिषियों के पास गई और मैंने जाकर उनसे कहा कि बताओ बताओ हमारे अयोध्या का राजा कौन होगा। तो ज्योतिषियों ने एक एक नहीं सब ने कहा क्यों चिंता करती हो, राजा तो यार भरत होगा। मैं आपको सही बात कह रहा हूं, कह रही हूं। अच्छा भरत बुआल हो ही है सांची, ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक बात है, तुम कहो तो उपाय तो बता दूं, पर तुम करो तब है उपाय। तुम्हारी सेवा में राजा रहते हैं, तुम्हारे बस में है दशरथ जी महाराज, उपाय मैं कहूं तुम कहो तो नहीं करूं भाई। अरे अरे मंथरा कहो कहो तू है डावड़ी कह तो सरी, परो कूप तू वचन पर सकाओ पूत पति त्या, तू कहवे तो मैं कुआ में पड़ जाऊं, तू कहवे तुम्हारे पति ने छोड़ दू, तू कहवे तुम्हारे बेटा ने छोड़ दू, तू बता तो सही तू मारे दुख रे वास्ते इतनी दुखी ओड़ी है और तू मारे हित में इतनी लागी ओड़ी है, फिर थारी बात ने मैं क्या छोड़ दे, नहीं छोड़ सकू। ऐसे केकई ने उसको बलि का बकरा बना दिया है, बकरा नहीं बकरी, बलि की बकरी बनाई भी नहीं, और अपने कपट रूपी जो छुरी है बा आपके हृदय मानी तीखी करण लागी, अब कपट मन में खूब सजवण लागी। जैसे बकरा बकरी जिसको काटना होता है, बकरा ही काटते हैं वैसे, उसको हरा हरा चारा खिलाते हैं, पर उसको पता नहीं है कि मेरे तो अब थोड़ी देर में बलि दी जाएगी, पता नहीं है। ऐसे केकई को पता नहीं कितनी बड़ी आफत में मैं जा रही हूं। ये दिखने में तो बात अच्छी दिखती है लेकिन परिणाम में बड़ी खराब होती है। कही चेरी सुधी ऐ कि नाई, वो कहने लगी कि देखो देखो सुनो स्वामिनी, आपकी और हमारी कई बार बातें होती है, हाँ होती है। आपने हमको बताया था कि एक बार युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के अंदर आपने महाराज के प्राण बचाए थे, उसमें उन्होंने आपको दो वरदान सुरक्षित रखने के लिए कहा कि दो मेरे वरदान है, हाँ कहे थे, तो बस ये दो वरदान मांगने का अब आज समय है। दो वरदान में पहला तो आप वरदान मांगो कि अपने बेटे को राजगद्दी, सबसे पहले तो राजगद्दी छीनो, पर देखो राजगद्दी से ही पार नहीं पड़ेगी, विद्रोह हो जाएगी, सब प्रजा है ना सब विद्रोह कर लेगी, तो पहला ही पहला वरदान तो कहो कि राजगद्दी भरत को मिले, और दूसरा वरदान मिलना चाहिए राम को वनवास। देखो इसने 14 वर्ष नहीं कहा है, ये 14 वर्ष की बात यहां नहीं, मंथरा ने नहीं कही, मंथरा ने कहा कि सुतयु राज और रामई बनवासु, बस ये दो वरदान। देव लेव सब सवती हुलासु, बस ये बात आप मान लो तो बस फिर जो है सब काम आपका ठीक हो जाएगा, पर ये सीधे जादे मत मांगना, ऐसे नहीं हुए, घी निकलता है ना तो सीधी आंगली से नहीं निकलता, घी है तो यूं आंगली, हाँ साहब घी ना सीधी आंगली नहीं, यूं थोड़ा टेढ़ी करोगे तो घी तर लौंदा निकलेगा, ये ऐसे सीधे सीधे काम नहीं होगा। तुम वहां जाकर के राम जी की जब तक वो सौगंध नहीं खा ले ना तब तक कुछ बोलना नहीं, मुंह फुलाए रहना, कोप भवन में चले जाना, खूब गुस्सा करना है, और बैठो तब कैसे बैठो सब बताया उसको, बैठो तब यूं करके यूं बैठना, और यूं आवे तो यूं मुंह कर लेना, वो यूं आवे तो यूं कर लेना, और यूं आवे तो आंख बंद कर लेना, और तो तुम जो है कुछ बोले एक बार भी तुम मुस्कुराना नहीं, ऐसे करके बड़ा कोप करना, खूब अच्छी तरह से उसको बताया। भूपति राम शपथ जब करें, राम की सौगंध खादे में तुम्हारे पति दशरथ जी महाराज, तब उनसे तुम ये वरदान मांगना, और यदि आज ही चूक गए तो आज चूक गए तो वे चूकिया 84 है, हो ही अका जो आज निशी बीते वचन मोर प्रिय मानव जी की, मेरे वचन बिल्कुल सत्य है, आज चूक गए तो फिर ये मौका बार बार मिलने का नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ कुघा तू करी पाती के निस, पापनी ने बड़ा भारी खराब काम किया और उसको कहा कहे से कोप गृह जाओ, जाओ जाओ तुम कोप भवन में चली जाओ। याद रखना, देखो ये क्या की कोप भवन तक साथ में गई मंथरा, साथ में बह उसके सब ड्रेस दी उसको, ये ड्रेस पहनो काली, काली ड्रेस पहनो, काला चिन्ह होता है वो शोक का होता है, काली ड्रेस पहनो और ये आभूषण यूं फेंको, यूं ऐसे ऐसे आभूषणों को फेंका जाओ, ऐसे बैठ जाओ, इस रास्ते से आएंगे ना तुम पहले से इस रास्ते से, ध्यान इधर रखना इस रास्ते से आएंगे, ऐसे करके खूब समझा दिया उसको, बार बार बड़ी बुद्धि। उधर उसने कहा कि अरे तूने तो मेरी आंखें खोल दी, वाह भाई वाह मंथरे, तुरे जैसा तू ये तो सम, तो ही सम हित न मोर संसारा, तेरे बराबर तो मेरा कोई संसार में हित करने वाला नहीं है, इतना तुमने हमारा हित कर दिया। के बोल रही है, याद रखना जो कल मेरा मनोरथ पूरा हो गया तो बस मैं मेरी आंख की पुतली की जगह तुझे बैठाऊंगी, आज तक तुझे दासी कहती हूँ, कल से मैं आंख की पुतली, आंख की पुतली का अर्थ तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगी मैं, और तुझे फिर देखना आभूषणों से लाद दूंगी खूबियों, ऐसा कहकर के और वो कोप भवन में जाकर के बैठ गई, कोप भवन में जाकर बैठी। तो देखो विपत्ति का बीज बो दिया गया, विपत्ति का तो बीज है और मंथरा है, ये वर्षा ऋतु है, और केकई की जो खराब बुद्धि है वो भूमि है, और जो कपट है, कपट जाड़ है, वो जड़ है। उस विपत्ति के बीज में से दो पत्ते निकले आए, वो दो पत्ते क्या है कि दो दल दो वरदान है ना, ये दो वरदान दो पत्ते हैं, पत्ते इसका परिणाम दुख होगा, फल इसका फल दुख होगा, कोप वगैरह की सब सब प्रकार से कोप समाधु साधु सब सोई सब कर लिया और किसी को कुछ पता है नहीं, और इधर अयोध्या में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, खूब तमाशे हो रहे हैं, राजद्वार में खूब लोग कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, कोई क्या करते हैं, एक आता है एक जाता है, ऐसे वहां आनंद ही आनंद हो रहा है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
जय जय